नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाये मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 34। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैधर्वी मदिरेक्षना अन्वधावत पाण्डेशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैधर्वी मदिरेक्षना अन्वधावत पाण्डेशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैधर्वी मदिरेक्षना अन्वधावत पाण्डेशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। शब्दार्थ हित्वा त्याग कर, गृहान घर को, सुतान बच्चों को, भोगान भौतिक सुखों को, वैधर्वी राजा विदर्भ की पुत्री, मदिर इक्षणः मादक लोचनों वाली, अनुधावत अनुगमन किया, पांडेशम राजा मलय ध्वज का, ज्योत्स्ना इव चंद्रिका के समान, रजनीकरम चंद्रमा। अनुवाद, जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है उसी तरह राजा मलय ध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्रों के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ हो ली। तात्पर्य, जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत वास करता है तो उसके कुछ बड़े चढ़े भक्त उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरुवाष्टक में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भावनावृत में अग्रसर हो सकता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उसकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जाती है। इस श्लोक का मदिरेक्षना शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द का व्याख्या मादक रूप में की है। यदि अर्चा विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाए तो उसे मदिरेक्षना कहा जाता है। रानी वैधर्वी की आंखें अत्यंत मोहक थी। जिस प्रकार मंदिर में अर्चा विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाती है जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सघनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। आराध्यो भगवान व्रजे सतनयस्तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरगेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणमलम् प्रेम पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मदविदं तत्रादरान परा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो वर्णन चल रहा है बहुत ही सुंदर वर्णन है, खास करके इससे पहले वाले श्लोक में, इस श्लोक में और आने वाले श्लोक में प्रभुपाद गुरु का निर्जन भजन के बारे में बता रहे हैं कि गुरु को निर्जन भजन के लिए एक समय में क्या करना चाहिए, अपने आप को समय निकालना चाहिए और गुरु की सेवा में जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर चुका है ऐसा एक भक्त उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। जिस तरह एक वानप्रस्थ जब वन में चला जाता है तो उसके पीछे पत्नी सभी चीज़ों को त्याग करके उनकी सेवा में चली जाती है। तो ये जो विशेष जहाँ यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है गुरु सेवा, ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि 64 अंग है जो भक्ति के विशेष अंग माने जाते हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है। और इन 64 अंगों में पहले 3 जो मुख्य अंग है उसमें गुरु की शरणागति, गुरु से दीक्षा और गुरु के प्रति आदर और भक्तिमय सेवा, और फिर उसके बाद फिर और अलग अलग जो 64 अंग है उसको वर्णित करने के बाद अंत में बोलते हैं कि पांच महत्वपूर्ण अंग हैं जिसमें भागवत श्रवण, अर्चा विग्रह सेवा, नाम संकीर्तन, भक्तों का संग और मथुरावास या धामवास। तो ये पांच विशेष अंग बोला जाता है। तो ये भक्ति के विशेष पांच अंग है जो अगर हमारे जीवन में हम बहुत ध्यानपूर्वक बितारते हैं तो बहुत आसानी से प्रगति हो जाती है। इन अंगों को उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो गुण है गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के वचनों का पालन करना। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि आचार्य माम विजानियाम, कि हे उद्धव, जो आचार्य है या गुरु है उसे मेरे समान या मैं ही समझो। और इसी को हम देखते हैं जब हम गुरुवाष्टक गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, साक्षात हरि। तो गुरु को बहुत ऊंचा स्थान है, और ऊंचा स्थान क्या है, वो साक्षात हरि बोला जाता है। आचार्यम वी जानियाम, मैं आचार्यों में मैं हूं या मुझे आचार्य के जैसा समझो, आचार्य और मुझमें कोई अंतर नहीं है। तो इतनी विशेषता गुरु को दी जाती है, क्यों? क्योंकि हमारी बद्धावस्था में भगवान के साथ हमारा जो संबंध है या भगवान कौन है, भगवान की किस तरह सेवा की जाए, ये हमें मालूम नहीं है। इतने सालों से हम प्रवचन देते रहते हैं लेकिन अभी तक 1% के लिए हमें साक्षात्कार हुआ नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अपनी आप की ये बात है कि सबसे महत्वपूर्ण सत्यता ये है कि अभी तक हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि हम ये शरीर है ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं। तो इसके आगे की घटना है भगवान को जानना। तो गुरु हमारे जीवन में इस प्रकार की जो हमारे गलत धारणाएं हैं या हमारे जो अपूर्ण ज्ञान के द्वारा हमने अपने आप को एक जो भ्रम निर्माण किया है कि मैं एक शरीर हूं या मैं इस नाम का व्यक्ति हूं, इस स्थान में रहता हूं, ये मेरा कार्य है, ये मेरी पदवी है। तो गुरु जो प्रामाणिक गुरु है पहले हमारे जीवन में हमारी इस भ्रामकता को नष्ट करता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति होकर गए, ऐसे एक आचार्य होकर गए, होकर गए नहीं अभी हैं, माफ करिए, ये हमारी मूर्खता यही कि हम समझते होकर गए, नहीं आचार्य हैं। कि हर पन्ने पर हम ही शिक्षा देते कि हम ही शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। और कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, क्या है प्रभुपाद बार बार वही चीज़ बताते हैं, वही चीज़ बताते हैं, वही चीज़ बताते हैं, आगे की और घटना और अच्छी कथा और गोपनीय कथा, रास लीला और भगवान की अंतरंग लीला क्यों नहीं बताते हैं हमें? क्या प्रभुपाद जी को मालूम नहीं था? और परिणाम तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे संग में हम कुछ समय के बाद हमारे भक्त अलग अलग दिशा में अपना रुचि ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां अंतरंग लीला चलती है वो सुनना है उसको। लेकिन सत्यता हमने अभी तक देखी ही नहीं है। यहाँ गुरु अंतर निर्जन भजन करने के लिए जा रहा है, और उच्च सेवा में ऐसा भक्त जा सकता है जो उच्च स्तर का हो। तो ये जो बहुत विशेष बात यहां बताई जा रही है, वो बात समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक हम आत्मा को जानेंगे नहीं, आत्मा के कार्यों को नहीं करेंगे, तब तो भगवान की जो अंतरंग हुई लीला है उनको क्या जान पाएंगे हम? क्योंकि अभी तक काम वासना से भरे पड़े हैं हम। शरीर के सर से लेकर नख तक काम वासना से भरे पड़े हैं। आचार्य प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जो ओपनली हर किताब में इन चीजों को लिखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैथुन जीवन अंधकार है, मैथुन जीवन में जो जिह्वा और जो हमारी जननेन्द्रिय ये हमारे क्या है मोह का कारण है, ये हमारे बंधन का कारण है, ऐसा ओपनली लिखने वाला और कोई आचार्य नहीं है। उसका कारण यही है क्योंकि हम दिन रात यही चीज कर रहे हैं, शरीर की ही मांगों को कर रहे हैं और शरीर की मांगों को ही हमारा जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं और उसी के लिए जीवन जी रहे हैं। तो हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति सामने हमेशा होना चाहिए जो बार बार हमें पिटाई करते रहे, क्योंकि हम वो प्राणियों जैसे हैं, जब तक उनको मार मार के उनको शिक्षा नहीं जाती तब तक वो सुधरते नहीं है। सर्कस में जो बाघ होता है वो एक छड़ी के इशारे पर वो काम करता रहता है प्राणी, लेकिन जैसा वो व्यक्ति चाहता है वैसा वो कार्य करता है, लेकिन उसके पीछे उस व्यक्ति ने बहुत कष्ट लिया होता है उस जानवर को उस प्रकार का कार्य करवाने के लिए। तो प्रभुपाद एक ऐसे टीचर हैं, ऐसे एक व्यक्ति हैं जो हमारे जैसे जानवरों को वो बार 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 क्या करते हैं, पीटते रहते हैं। और पीटने का पहला अर्थ यही है कि हमें वो समझाना चाहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। और जब तक इस बात की पूरी तरह हमारे पास साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक इस साक्षात्कार के आगे आत्मा के स्तर पर हम नहीं कार्य करेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति और भगवान के साथ संबंध बहुत दूर की बात है, और उसके बाद वो अंतरंग लिंगा और दूर की बात है। ये तो फिर हमारा मनोरंजन नहीं है। जिस तरह हम सिनेमा गृह में जाके बैठ जाते हैं, सिनेमा गृह में जाकर बैठ जाते हैं, क्यों? वहां क्या होता है? वही अंतरंग लीला होती रहती है। हीरो हीरोइन सामने आ जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये होता है, वो होता है, और हम बहुत खुश हैं। अंधेरा हॉल है, कुछ चित्र हिल रहे हैं और हम आनंद में हैं। पिक्चर खत्म हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, हम उठ के आ जाते हैं, खत्म। क्या परिवर्तन? परिवर्तन बस काम वासना लेकर आ गए। तो अभी हम पिक्चर नहीं देखने जाते तो हम क्या करने जा रहे? यहां भागवत कथा हो रही है, वहां हो रहा है, वहां जाकर बैठ रहे हैं। वहां कुछ पिक्चर सामने आ जाते हैं, यहां व्यक्ति बैठ के वो गुणगान करता रहता है, गुणगान का ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, महात्मा कितने अच्छे हैं, कितनी गुह्य लीलाओं को जानते हैं। और जब बाहर आ जाते हो तो क्या लेकर आ गए? परिवर्तन, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं, और गंदगी और काम वासना में लिप्त हो गए हम। प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य है जिन्होंने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाया है। वही एक व्यक्ति है जो परिवर्तन लाता है। परिवर्तन वो है जो व्यक्ति को इस शरीर की जो मांगे है उससे दूर करके आत्मा के मांगों को देता है, आत्मा के भलाई के लिए वो जो कार्य देता है वो है सही गुरु, वो है सही आचार्य। और उसके लिए वो ये नहीं सोचता कि सामने वालों को अच्छा लगता है बुरा लगता है, नहीं, अच्छा डॉक्टर वही है जो पेशेंट की जो रोग है उसके लिए वो जो आवश्यक है वो करे। काटना है तो कैसे काटेगा, इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन देगा, फाड़ना है तो फाड़ेगा। तो हमारे जीवन में हमें बहुत सतर्कता से प्रभुपाद की इन वचनों को उतारना पड़ेगा। प्रभुपाद एक ऐसे है, प्रभुपाद हमेशा लिखते हैं, यू आर एवर वेल विश। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि एवर वेल विश, मैं हमेशा आपका शुभ चिंतक हूं हमेशा के लिए। हम शुभ चिंतक होते रहते जब तक हमारी कुछ क्या बोलते स्वार्थता होती, तब तक किसी से कुछ लेना है तब तक हम शुभेच्छा देते रहते हैं, उसका आशीर्वाद देते रहते हैं, और कुछ बात नहीं बनती है तो अंदर से चालू हो जाता है, या ऐसा है वैसा है, शाप देना चालू, कर्ज करना चालू कर देते हैं, उसके प्रति पूरा बड़ा भोला सब जगह फैलाना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ से भरे हैं, क्यों वासना से भरे पड़े हुए हैं, फंसाना हमारा गुणधर्म हो गया है, गुणधर्म है ही हूं शरीर के साथ जुड़े हुए। तो इसलिए हमारे शुभ चिंतकता जो है वो बस हमारे स्वार्थ तक ही है। लेकिन जो प्रभुपाद जब लिख रहे हैं कि एवर वेल विशर, मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि इस आत्मा का उद्धार होना ही है, उस आत्मा के व्यवहार के लिए, उद्धार के लिए मैं जो भी बोलूंगा, मैं जो भी करूंगा उसके उद्धार के लिए, उसके अच्छा के लिए ही बोलूंगा, दे दूंगा, चाहे वो बुरे मुझे भले वो न समझे, न समझते भले मुझे वो कुछ बुरे शब्द बोले, लेकिन वो अच्छा करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो पूरे निस्वार्थ हैं। जिस व्यक्ति की हृदय में किसी भी प्रकार का वासना नहीं है, फंसाने की प्रवृत्ति नहीं है, निस्वार्थ है, ऐसा ही व्यक्ति सामने वाले का सबसे अच्छा कर सकता है, सामने वाले का उद्धार कर सकता है। हमारे बारे में क्योंकि हम ये सभी पड़ा हुआ है, हम स्वार्थी हैं, फंसाते हैं, वासना से भरे पड़े हैं, इतनी सारी इच्छाएं हमारे पास पड़ी है, इसलिए हम जो करेंगे वो सामने वाले के भला के लिए होगा ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने भला मतलब वो शरीर होगा, बस शरीर को सुख देना है, शरीर को बचाना है, मांगों को पूरी करना है, यही देखेंगे हम। हम ये नहीं देख पाएंगे उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी क्या मांग है, उसकी क्या इच्छा है, क्योंकि इस चमड़ी वाली आंखों से हम जो देख रहे हैं सिर्फ क्या देख पा रहे हैं, शरीर तो देख रहे हैं, काला है, सफेद है, लाल कपड़े वाला है, सफेद कपड़े वाला है, साड़ी वाले हैं, बूढ़ा है, जवान है, यही देख पा रहे हैं, आत्मा को थोड़ी देख पा रहे हैं। ये तो मेरी सत्यता है, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि आत्मा है, ये सब आत्मा है, नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा स्तर नहीं है। जब मेरा स्तर वो नहीं है तो मेरे पास जो है वही मैं दे दूंगा। मेरे पास क्या है? चमड़ी की आंखें और चमड़ी का जो स्वस्थता है, चमड़ी का वही दे दूंगा मैं, और पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। लेकिन आचार्य जो है, जो गुरु है, वो चमड़ी का ख्याल करते ही नहीं है। चमड़ी का ख्याल इसलिए करना है क्योंकि वाहन है, पेट्रोल जितना डालो कि वो तो वहां तक पहुंचा दे, उतना साफ सफाई रखो कि हमारे वहां स्थान तक पहुंचा दे, उस गाड़ी को चलाना है, उस स्थान तक लेकर जाने तक उतना ही ख्याल करना है। और ये है हमारे गोस्वामी, ये है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, कि उन्होंने इन सब चीजों को त्याग दिया। सब खास करके दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, संपत्ति और स्त्री। माफ करिए माताएं, सत्यता जो है वो, जो यहां जो सत्यता है वो इसी सत्यता को बताया जा रहा है, क्योंकि ये दो चीजें हमारे जीवन में हैं जो हमें स्वार्थी बनाते हैं और फंसाने की टेंडेंसी लगाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में स्त्री आ जाती है और पैसा आ जाते हैं, या स्त्री के लिए कार्य करता है, पैसे के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति एक नंबर का स्वार्थी हो जाता है, एक नंबर का चीटर हो जाता है। और जो स्वार्थी है और वो जो चीटर है, वो भगवान की कभी भी प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान परम सत्य है, शुद्धम अपाप विद्धम है, वो बहुत शुद्ध है और अपाप, उनको उनके पास पाप आता भी नहीं है। और जो व्यक्ति स्वार्थी है और फंसाता है, वो पूरी तरह क्या है, शरीर स्तर पर है वो। और शरीर क्या है, सत्य है, फिर वो स्त्री का शरीर हो या तथाकथित पुरुष का शरीर हो, कितना सत्य है। और जो व्यक्ति सत्यता को स्वीकार न करते हुए असत्यता के लिए कार्य करता है, वो भगवान के प्रति जाएगा कैसा? भगवान इधर परम सत्य यहां है। इसीलिए क्या बोलते हैं, भगवान सूर्यसम, कृष्ण सूर्यसम, माया है अंधकार। जहां जहां कृष्ण, तहां नहीं माया राधिकार। भगवान सूर्य के समान है। और माया मतलब क्या, जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है वो, मतलब क्या, असत्यता। इस असत्यता को लेके हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सत्यता क्या है, आत्मा शाश्वत। और आत्मा में किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं है। आत्मा हमेशा निस्वार्थी है, काम वासना से दूर है, उसमें फंसाता नहीं है, फंसाने की टेंडेंसी नहीं है, वो धोखा नहीं देता, किसी को खींचता नहीं है, किसी के प्रति गाली नहीं बकता। आत्मा शुद्ध है, भगवान का अंश है। क्यों, भगवान कैसे, शुद्धम अपाप विद्धम, और उनके हम अंश है। तो ये जो मलिनता लेके भगवान के पास हम नहीं जा सकते। तो जब तक ये स्वार्थ भावना है, जब तक ये फंसाने की टेंडेंसी है, तब तक हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो फंसाने की जो प्रवृत्ति है, उससे हमें दूर होना है। इसीलिए शास्त्र बार बार बोलता है कि समय आने के बाद फिर वही मानप्रस्थ होना है। मतलब क्या, असत्यता को छोड़ना है, हो गया, संसार देख लिया, जवाबदारी पूरी कर ली। जवाबदारी क्या, कि बच्चों को कृष्ण भावनावहित होने के लायक करवाना है, वो जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको घर परिवार दे दिया, उनको संपत्ति दे दी, उनको गाड़ी दे दी और भोग विलास दे दिया, ना, फिर वो और एक बड़ी भूल है जो हमें हमेशा मुंह में डालेगा। फिर तो मुंह का मूल कारण है ये शरीर, जो शरीर क्या करता है, हमेशा हमें खींचता रहता है अपनी मांगों के लिए। तो इस स्वार्थ स्वार्थता से और फंसाने की प्रवृत्ति से बचना है, बार बार ये बता। और उसका आजकल के स्वभाव में, आजकल के जमाने में जो बेसिक जो उसका पाया है, पैसा। मैं बार बार पैसे के बारे में बहुत चर्चा करता हूं, मैं करता हूं, प्रभावित करते हैं, देख सकते हैं कि आजकल जो पेपर करेंसी चल रही है, किस तरह हमारे जीवन में क्या कर रही है, हलचल मचा रही है। खाना चाहिए हमें, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए चाहिए, कुछ दवाई चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें, ये पांच बेसिक चीजें हैं जिसके बिना एक मनुष्य समाज निर्माण नहीं होता। जिस समाज का उद्दिष्ट है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, अगर किसी के पास ये बेसिक पांच चीजें हैं तो भक्ति आसानी से हो जाती है। भगवान का नाम निर्जन भजन करने के लिए गुरु जाता है। क्या चाहिए भजन करने के लिए? क्या चाहिए? थोड़ी सी एक द्रोण खिचड़ी सुबह दोपहर शाम हो गई तो भजन हो जाता है। बैठने के लिए एक स्थान जहां थोड़ा सा सर्दी गर्मी से बच जाए और शरीर के बराबर एक कपड़ा हो गया, भजन चालू हो जाएगा। तो उस स्तर पर तक पहुंचना है हमें, उस स्तर तक। यह है गोस्वामियों का हमारा शिष्य कि उस स्तर तक जाना है कि जहां शरीर की आवश्यकता हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि शरीर की आवश्यकता कम होना मतलब इस शरीर की जो मोह माया है, शरीर का जो अस्तित्व है, सत्यता है, उसको प्रकट करना कि शरीर कितना नाशवान है, शरीर कितना हमारा धोखा देता है, इस शरीर के कारण कितने प्रकार के हम जंजाल में फंस रहे, हर रोज अलग अलग प्रकार की दुविधा में आ रहे हैं। इस शरीर से हमने नाते निर्माण कर दिए, नातों में इतने सारे खिंचाव तनाव होता रहता है। उस खिंचाव तनाव का अर्थ क्या है? इसलिए नहीं कि कृष्ण में भक्ति, कृष्ण के प्रति सेवा करना है, भक्ति में और प्रगति करनी है, नहीं। वो खिंचाव तनाव इसलिए कि शरीर को और किस तरह सुखी रखा जाए, शरीर से के आने वाली जो दुख दर्द है उसको किस तरह मिटाया जाए, इसलिए आपस में खिंचाव तनाव होता रहता है। तो इस खिंचाव तनाव जो है ये क्यों? क्योंकि हम अभी तक शरीर के प्रति अपना संबंध ज्यादा रखते हैं। लेकिन मार्ग क्या है कि समय के साथ उम्र हो रही है तो हमारे शारीरिक आवश्यकताओं का भी हम क्या करें, थोड़ा 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 त्याग करते जाए। यहां जैसे बताया जा रहा है, सुंदर आंखों वाली थी, बहुत कुछ था, संपत्ति थी, पुत्र थे, परिवार था, समय आया तो छोड़ दिया और चले गए। युधिष्ठिर महाराज सम्राट, पूरे धरती के क्या राजा थे, कितना धन ऐश्वर्य होगा, कितना नौकर चाकर होंगे, कितना क्या क्या होगा, सोने चांदी के आभूषण होंगे, वस्त्र रेशमि के होंगे, क्या नहीं होगा, जिसके लिए हम दिन रात सोचते रहते हैं। जैसा पता चला कि भगवान कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे, परीक्षित महाराज को राजा बनाया, रातों रात सभी अलंकार आभूषण सब कुछ को त्याग करके एक साधारण सिंपल कपड़ा शरीर के ऊपर डाल के चल पड़े। पीछे मुड़ के भी देखा नहीं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। जब युधिष्ठिर महाराज आगे चल गए तो पीछे से कौन जा रहा है? भीम गया, अर्जुन गया, ये गया, वो गया, सब। ये हमारी है वैदिक संस्कृति। भगवान के लिए राजा बनेंगे, पूरा धरती हमारे साथ उसको हम ये करेंगे, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार। भगवान नहीं है, भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा है, निकल पड़ेंगे हम। सुखदेव गोस्वामी, भगवान के लिए हम भीख मंगे भी हो जाएंगे, भगवान के लिए हम राजा महाराजा भी हो जाएंगे। तो राजा महाराजा भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। पूरा भगवद गीता क्या है? अर्जुन चाहता था कि नहीं नहीं चाहिए संसार का, ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ उनको, सबके उनकी अच्छे के लिए हो जाएगा, वो आनंदी रहेंगे, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं लड़ो, युद्ध करो, मारो उनको, धनुष उठाए सबको मार दिया और राजा बन गए। पूरे सम्राट बन गए। पता चला भगवान चले गए, सब छोड़ के साधारण कपड़े में निकल पड़े। ये है भगवान की सेवा के लिए सब कुछ। और वो कैसा पता चलेगा? उसके लिए गुरु, श्रेयांसो धर्मो विगुण। हाँ, गुरु जानेंगे कि इस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उस स्वभाव के अनुसार कुछ सेवा में लगाओ। जानते थे भगवान, जानते कि हे अर्जुन, तू सन्यासी बनने, ब्राह्मण बनने योग्य नहीं है, तू त्याग नहीं कर सकता, तू भिक्षा नहीं मांग सकता, तेरा स्वभाव है क्षत्रिय है, तू तुझसे किसी का पीड़ा सहन नहीं होगा, अधर्म उससे सहन नहीं होगा, इसलिए तू इससे भागेगा तो क्यों तू किसी से वध कर लेगा बिना मतलब का, इसलिए मेरे लिए कार्य करो, उठाओ धनुष और मार दो। स्वभाव को जानते हुए उनकी सेवा में लगाना। तो माताओं, आपसे निवेदन है, आप बहुत ही इस भगवान की एक ऐसी शक्ति है आप, जहां भगवान की इस भक्ति का बहुत ही अच्छा प्रचार कर सकती है, लोगों को उनके मोह माया से बचा सकती है। जहां स्त्री का अवलोकन हो गया, जहां स्त्री को भ्रमित किया गया, वहां पूरा समाज नाश हो गया, पूरा क्या बोलते हैं कि असुरता आ जाती है। जहां स्त्री का संरक्षण किया गया, जहां स्त्री का लालन पालन हुआ है, जहां स्त्री को स्त्री के अनुसार जीने के लिए दिया गया, उस समाज में फिर कुंती महारानी जैसी स्त्रियों के कारण भगवान साक्षात उनके सामने खड़े हो जाते हैं, द्रौपदी जैसी स्त्री के कारण भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं, स्त्री पूरे संसार को बचा सकती है। किस लिए बचाना है? ताकि हम सब को इस दुनिया की इस मोह माया से, इस शारीरिक स्तर से हमें जाना है, क्योंकि ना हम शरीर है, ना हम स्त्री है, ना पुरुष है, लेकिन जब तक ये शरीर में है, जिस शरीर में है, उस शरीर को हमें ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए नियमों का। प्लीज, हमारे आचार्य गोस्वामीगण उतने उच्च स्तर पर थे, अंतरंग लीला में थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस लीला में होते हुए अपने शारीरिक धर्म को छोड़ा नहीं। उन्होंने अंत समय तक उन्होंने अपने वो जो नियम है जो उनको करते रहे। तो माताओं से निवेदन है कि आप जितने शास्त्र के नियम हैं, प्लीज कृपा करके प्रभुपाद जो चाहते हैं उसके अनुसार रहने के लिए प्रयास करिए। श्रीमद् भागवत की सातवें स्कंद में 11वां या 13वां अध्याय, उसमें सिर्फ 5 ही श्लोक हैं, 5 ही श्लोक हैं माताओं के लिए। माताओं को बताया जाता है कि अगर वो ये 5 श्लोकों का जीवन में पालन करेंगे, उनको और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी समय भगवत धाम जाएंगे। पूरा जितना सारा शास्त्र है, ये शास्त्र हमेशा इन पुरुषों के लिए, इनको ऐसा करना है, उनको ऐसा करना है, उनको वानप्रस्थ लेना है, उनको संन्यास लेना है, उनको ये करना है, शास्त्र हमेशा इनको टेंट किया गया है। और माताओं के लिए सिर्फ ये 5 श्लोक, मैं उसका अभी रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूं, अभी खबर बताऊं, सिर्फ 5 श्लोकों का अगर आप जीवन में इसी जीवन में प्रयास करोगे, माताओं आपको अलग से जन्म लेने की जरूरत नहीं, आप नहीं आओगी, आप नहीं आओगे आप, लेकिन उसको उतारना पड़ेगा। भक्ति यही है, नियमों को उतारना पड़ेगा, नियमों को उतारना पड़ेगा। जितना कठोरता से नियम लेंगे, वापिस नहीं, वापिस जंजाल में नहाएंगे। आप सबको लगता है जंजाल है? कितने जनों को लगता है? थोड़ा सा हाथ उठाएं। बाकी सिर्फ 40% लोगों को लगता है, बच्चा किसी को नहीं लगता है। मतलब अभी अभी है, अभी भी है कि लगता है कि आज नहीं कल हो जाऊंगा सुखी है? बहुत बड़ा जंजाल है। तो बस इस जंजाल से मुक्त होना है, बस पांच छोटे श्लोक बताए कि उसको ध्यानपूर्वक पालन करिए, खत्म, वापिस नहीं आना इस दुनिया में, वापिस भगवान के साथ आनंद में रहना है। और पुरुषों के लिए इतना सारा, ये सब सब जितना सारा शास्त्र है सिर्फ पुरुषों को नियम डालने के लिए, ब्रह्मचारी बनना है, वनप्रस्थ बनना है, गृहस्थ बनना है, संन्यास लेना है, ये नियम वो नियम, और क्या, ब्राह्मण है, वैश्य है, ये है वो है, सब ये इस शरीर के लिए है। क्यों? क्योंकि हम एक नंबर के बदमाश है, हम नियम नहीं चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए गुरु हमेशा क्या करता है, इस पुरुष शरीर को खींचता रहता है, कर्णधार गुरु कर्णधार खींच के, और इस शरीर में है तपस्या करने का स्वभाव है, पालन करने का स्वभाव है, उसको ठीक से करेंगे हम भी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे इस दुनिया में बहुत, क्योंकि जैसे कि मैं जब ब्रह्मचारी था तो मुझे इतना सारा कुछ जो गृहस्थों की जो कठिनाइयां होती है या पृष्ठता होती है पता नहीं था, वो ऊपर ऊपर बातें करता रहता था, भक्ति करनी चाहिए, सोना माला करना चाहिए, ये साक्षात्कार बहुत कम था, सत्यता बहुत कम थी, वो सिर्फ बड़ा गुब्बारा था, लेकिन भगवान से गुरु महाराज से प्रभा से हमेशा प्रार्थना करता था, गुरु महाराज मैं जब संसार दावा गा रहा हूं, प्रभा जब मैं संसार दावा गा रहा हूं, मैं रास्कल हूं क्योंकि जीवन में जब से पैदा हुआ तब से बस हमेशा गोदी में बढ़ाया चढ़ाया गया, तो संसार का दावा क्या है मुझे मालूम नहीं है, और जब तक ये दावा नहीं पता चलेगा तब तक मैं आपको पुकारूंगा नहीं है, गुरु महाराज मुझे बचाओ, प्रभुपाद मुझे बचाओ, नहीं पुकारूंगा, प्लीज ऐसी कुछ घटनाएं करो जीवन में ताकि मैं समझ पाऊं, हर रोज प्रार्थना करता था, परिणाम था हुआ, आप सबको मालूम है, ओपन है, ओपन सत्य है। और जो अभी गृहस्थ जीवन जीता हूं मालूम है, पढ़ अभी पढ़ाया लातों की वुध, क्या बातों से नहीं मानते, ब्रह्मचर्यगण प्लीज कृपा करके आप जिस स्थान पर हो गंभीरता से भक्ति करो, इधर उधर मत देखो, स्त्री के प्रति मत देखना, पैसे को ध्यान पूर्वक एक एक पैसे का हिसाब रखो, नहीं तो फंस जाओगे जीवन भर, फिर पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, और पैसे को लाने के लिए दुनिया भर का झूठ मूठ करोगे और इधर ही रहो जाओगे, बच जाओ, क्यों ग्रस्त हो बराबर, किसना किसना पड़ता है, बराबर है ना, ग्रस्तों को मान्य है, मैं जो बोल रहा हूं कितने जनों को लगता है मान्य, हाथ उठाइए, नहीं लगता, अभी तक नहीं लगता है ना, सबको मालूम है सबको, तो कृपा करके ये जो जंजाल है इसमें से बचिए, नियमों को पालन करिए, थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन अभी जितना जीवन है तब तक तो ये तकलीफ लेनी है, उसके बाद तो वापिस आना नहीं है ना, अगर आना है तो मौज मस्ती में रहो, इधर मत आओ फिर, क्योंकि यहां भी आकर आप सुख नहीं रहोगे और वहां भी आकर सुखी नहीं रहोगे। प्रभात बोलते हैं भगवान के भक्त एक बार भक्ति करने के बाद वो आध्यात्मिक जगत का भी सुख ठीक से नहीं ले पाएंगे और भौतिक जगत भी सुख से नहीं पाएंगे, क्यों, आध्यात्मिक जगत में अगर सुखी होना है तो नियमों को पालन करना पड़ेगा, भौतिक जगत में जाना है तो नियमों को भूलना पड़ेगा, जो हमें समझता नहीं हमें मालूम है कि और दुख में आ जाएंगे, तो कृपा करके गंभीर हो जाना है, गंभीरता से आगे बढ़ना है, समय की बात है, ज्यादा समय नहीं है अपने पास, ऐसा नहीं समझना कि हमारे पास 40 है 50 साल है 100 साल है, नहीं है समय नहीं है हमारे पास, तो उतने समय के लिए प्रयास करके पकड़ के चलो भाई, जितने नियम है प्रयास करो निकल जाओ, नहीं तो वापिस आना पड़ेगा, और इतना कितना आना पड़ेगा, तुकाराम महाराज बोलते कि मनुष्य जीवन कब तक कैसा मिलने की संभावना है, जैसे समुद्र में एक सुई फेंक दी, कितना चांसेस है कि वो सुई वापिस मिलेगी, है चांसेस है कुछ, वैसा हो जाएगा फिर कितने जन्मों का कितना सारा कष्ट, एक जीवन का कष्ट अभी देख लिया और इतने जन्मों का और वापिस कष्ट लेना है, तो हम जैसे मूर्ख और कोई नहीं होगा, तो कृपा करके
गंभीरता से नियमों को पालन करो, गंभीरता से।
स्त्रियों माता प्लीज 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 आपके चरणों में निवेदन करना। श्रीमद् भागवत में है, मैं कृपा करके अभी तो श्रीमद् भागवत में सातवें स्कंद में 11 से लेके 13 ये 3 अध्याय है जिसमें वानप्रस्थ, जिसमें गृहस्थ क्या होता है, जिसमें वर्णाश्रम क्या है और सभ्य जीवन, ये 3 अलग अलग ये है अध्याय है। तो उसमें से 3 में से एक है, मैं पिछली बार बोला था इस बार भूल गया मैं, तो ये 3 अगर 3 अध्याय भी अगर हम ठीक से पढ़े सभी जन, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसको पालन करने का प्रयास करना है, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कितना आसानी से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जब नियम सामने आते हैं तो क्योंकि हमारा वो स्वभाव है, हम भोग करना चाहते हैं, हमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहते, हम बंधन नहीं चाहते, तो हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि मन है, मन इतना नालायक है, इतना बदमाश है, हमेशा वो अपने विचारों को और अपने आशाओं को प्राप्त करने में लगा रहता है, तो उसके कारण इन नियमों को पालन करने में कठिनाई जाती है। क्योंकि है ऐसे वातावरण में पले बड़े हुए हैं कि मन को हमें पहले से बचपन से हमें कभी ट्रेनिंग नहीं दी, मारा नहीं मन क्या हमारे को, इसलिए भाई मन बड़ा हो गया, बड़ा क्या बड़े बड़े व्यक्ति को मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सूखे बाम्बू को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वैसा मन हमारा बहुत बढ़ गया है तो इसको टेन करना मुश्किल होता है। लेकिन जानते हुए कि भाई जब तक इस मन को अगर मैं मोड़ नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरे लिए संसार चक्र बना रहेगा, इसलिए गंभीरता से प्रयास करना है और साथ में आके एक दूसरों को उत्साह देकर एक दूसरों को अपनी अपनी सत्यता बताओ, जीवन की सत्यता बताओ, मुझे ये रोग है, हमें इस परिस्थिति में है, हम दुख में है, जब हम चिल्लाएंगे तभी जाके मदद होगी ना, तभी जाके हमें मदद होगी, तभी जाके हमें अपने आप सही दवा मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा। तो घबराओ मत, जैसे कि मराठी में कहावत है सर्वांच्या घरी चुली सारख्याच, सबके घर में चूल्हा एक ही है, धुआं भी देता है और आग भी देता है, इसलिए कोई विशेषता नहीं, थोड़ा किसी का ज्यादा धुआं दे रहा है, किसी का ज्यादा आग नहीं दे रहा है, इसलिए काम वासना सब में पड़ा हुआ है, कोई मत समझना नारायण छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जिसके पास काम वासना नहीं है, तो ये रोग है, ये सब दुर्गुण है, इसलिए इन चीजों को बोल के उसके ऊपर क्या करना है, हमें दवाई लेनी है, और दवाई क्या है, गंभीरता से साथ में आकर साधना करना है, नियमों को पालन करना है बस, और यही प्रगति का लक्षण है। इतना जितना करेंगे अपने आप हम एक गुरु की सेवा में प्रामाणिकता से रहेंगे। माफ करिए समय हो गया है, किसी के हृदय में अगर कुछ ठेस पहुंचा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, मेरी कोई ये नहीं है कि आप लोगों को दुख दे दे, कष्ट दे दे, बस यही इच्छा है कि हम सब इसी जीवन में भगवान के पास चले जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। आपने कौन सा कपड़ा डाला हुआ है और आप कौन से आश्रम में हैं? आपने कौन सा कपड़ा डाला है और कौन से आश्रम में हैं आप? तो क्यों? लेकिन ड्रेस कोड है, लेकिन ब्रह्मचारी क्यों? अगर ये कलयुग के लिए नहीं है तो क्यों दिया गया?
हमारे
ये सभी समय के लिए देखिए, भागवत जो पुराण है या कोई भी ग्रंथ है, ये समय में बंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत कृष्ण के जैसे, ये कृष्ण है, कृष्ण के ज्ञान में और कृष्ण में कोई अंतर, इसलिए इसको कोई आप बांध नहीं सकते कि सत्ययुग का है और कलयुग का है, नहीं, ये सभी अवस्था में सभी के लिए लागू पड़ेगा। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ऐसे नहीं है सत्ययुग में, जो ऐसा बोलता है कलयुग में नहीं, वो मूर्ख है। क्यों? फिर महाप्रभु संन्यास नहीं लेते, हमारे भक्ति चेतन ठाकुर संन्यास नहीं लेते, प्रभुपाद ना संन्यास लेते ना ग्रस्त बनते, ना तो वो फिर ब्राह्मणों की दीक्षा देते अगर कलयुग के लिए नहीं तो, बराबर ना? अगर ये कलयुग के लिए नहीं है तो प्रभुपाद ना किसी को संन्यास देते, ना ब्रह्मचर्य आश्रम निर्माण करते, ना ब्राह्मण दीक्षा देके। कि अगर वर्णाश्रम नहीं है तो फिर ये क्यों किया उन्होंने? सिंपल सी बात है, जो बुद्धिमान है वो समझ लेगा, जो बुद्धिमान नहीं वो फिर बोलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है इन चीजों में, ये क्योंकि शाश्वत है, इसमें काल का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। ठीक है, सातवां स्कंद। जय श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो।